ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम बिन चिन के साथ वार्ता की। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने वियतनाम के ना तारांग में दूरसंचार विश्वविद्यालय में वर्चुअल माध्यम से सेना सॉफ्टवेयर पार्क का उद्घाटन किया। ये भारत और वियतनाम के बीच की सहयोगी परियोजना है। भारत ने इस परियोजना के लिए $5 मिलियन का सहायता अनुदान प्रदान किया है। दोनों पक्षों ने सीमा शुल्क, क्षमता वर्धन, कृषि अनुसंधान और शिक्षा, समुद्री विरासत, औषधीय पौधों तथा कानूनी क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रसार भारती और वॉयस ऑफ वियतनाम ने रेडियो और टेलीविजन में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। दोनों पक्षों ने ऋण सीमा समझौते तथा वियतनाम में मायसोन यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की पुनर्बहाली पर समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और वियतनाम के साथ पिछले 10 वर्ष में संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। दोनों पक्षों के संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को एक आकार दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 85% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने भारत में बुद्ध सर्किट के लिए वियतनाम के लोगों को आमंत्रित किया। श्री मोदी ने कहा कि वियतनाम के युवाओं को नालंदा विश्वविद्यालय से लाभ उठाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि एक्ट ईस्ट नीति तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में वियतनाम भारत का महत्वपूर्ण साझेदार है। श्री चिन का आज सुबह नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। श्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने राजघाट में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि भी अर्पित की। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय ने 7 न्यायाधीशों की एक पीठ ने आज बहुमत से राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उपवर्गीकरण के अनुमति देने संबंधी फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2004 के ईवी चेन्नैया के फैसले को खारिज कर दिया। ईवी चेन्नैया ने फैसले में कहा था कि अनुसूचित जाति के आरक्षण का उपवर्गीकरण भर्तियों और सरकारी नौकरियों में स्वीकार्य नहीं है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज राज्यसभा में बताया कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 359 पद रिक्त हैं। एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि पूरे भारत में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में भी 5,238 रिक्तियां खाली हैं। श्री मेघवाल ने कहा कि मौजूदा रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की जिला अदालतों में रिक्त पदों को भरना उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री मेघवाल ने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित 24 प्रस्ताव प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में हैं। केरल में वायनाड जिले के मुंडकई, अट्टामला और चूरनमलई क्षेत्रों में बचाव और राहत अभियान जारी है। इस जिले में मंगलवार को हुई भूस्खलन की घटना के कारण जानमाल की काफी क्षति हुई है। राहतकर्मी प्रभावित क्षेत्रों में जमे मलबों के ढेर में दबे जीवित बचे लोगों और मृतकों की तलाश कर रहे हैं। जंगलों की सीमा से लगे पुंचीरी वट्टोम क्षेत्र में जीवित बचे लोगों की तलाश जारी है। तलाशी अभियान में खोजी कुत्तों को भी तैनात किया गया है। अब तक लगभग 260 लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं। 90 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। पेरिस ओलंपिक में निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन शूटिंग प्रतियोगिता में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक जीता। पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन क्वालिफाइंग स्पर्धा में कुसाले ने 7वें स्थान पर रहकर फाइनल में जगह बनाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वप्निल कुसाले को प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वप्निल कुसाले ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए पदक जीता। श्री मोदी ने कहा कि वो इस श्रेणी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट भी हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी श्री स्वप्निल कुसाले को पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वप्निल कुसाले पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन श्रेणी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।